नमस्कार श्रोताओ, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। प्रिय श्रोताओ, जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के नए नियम में से कुरंथियों के नाम संत पौलुस द्वारा लिखी गई दूसरी पत्री का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं। हमें विश्वास है कि इस अध्ययन के द्वारा आपको आत्मिक लाभ मिल रहा है। तो आइए, इससे पहले कि हम आज के इस बाइबल अध्ययन में सम्मिलित हों, मन की तैयारी के लिए सुनते हैं एक मधुर संगीत रचना।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थ्य नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और मुझे विश्वास है कि आप सब भी परमेश्वर की निकटता में रह करके कुशल पूर्वक हैं। मित्रों, मैं आप सबका इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ, विशेष करके हमारे उन नए मित्रों का जो पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। और इसके साथ मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ जो हमारे इस कार्यक्रम को सुनकर अपने जीवन में आशीषों को प्राप्त करते हैं और पत्र और फोन के माध्यम से अपनी आशीषों को हम तक पहुँचाते हैं। मेरी आपसे निवेदन है, यदि आपके जीवन में भी परमेश्वर के आशीष मिलते हैं तो अवश्य ही हमें पत्र या फोन के द्वारा अवगत कराएं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम इन दिनों दूसरे कुरिन्थियों के पत्री, जो नए नियम के पत्री है, उससे अध्ययन कर रहे हैं। और हमने देखा कि पिछले अध्ययन में पौलुस ने हमें इस बात को बताया कि व्यवस्था के द्वारा हमें पाप बोध होता है जो मृत्यु को लाती है, परंतु आत्मा के द्वारा हम जीवन को प्राप्त करते हैं। आज हम अपने उसी क्रम में आगे बढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले आइए हम सब प्रार्थना करें और आज के अध्ययन के लिए परमेश्वर से सहायता मांगें। हमारे दयालु और प्रेमी पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके प्रेम, दया और करुणा के लिए, जिसे आप हमारे जीवन में प्रतिदिन बड़ी दया के द्वारा देते हैं। इस समय जब हम आपके वचन में से सीखते हैं, हमारी प्रार्थना है कि आप हम सबको अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान कीजिए, ताकि जो कुछ भी आज हम सुनते हैं अपने जीवन में उसे समझ सकें, ग्रहण कर सकें और उसके अनुसार से चल सकें। हमारी प्रार्थना उन भाई बहनों के लिए भी है जो बीमार हैं, निराश हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं, जो किसी न किसी रूप से अपने जीवन को समाप्त करना चाहते हैं। पिताजी, आप उन सब पर अपनी कृपा दृष्टि प्रदान कीजिए, अपनी शांति दीजिए, ताकि प्रत्येक जीवन आप में सुरक्षित हो जाए। इस समय फिर से एक बार हम सबको आपके हाथ में सौंप देते हैं। बड़े धन्यवाद के साथ प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, आइए आप मेरे साथ निकालिए दूसरे कुरिन्थियों के पत्री 3 अध्याय उसका 14 पद। दूसरे कुरिन्थियों के पत्री 3 अध्याय उसका 14 पद लिखा हुआ है, परंतु वे मति मंद हो गए, क्योंकि आज तक पुराना नियम पढ़ते समय उनके हृदय पर वही पर्दा पड़ा रहता है, पर वह मसीह में उठ जाता है। ध्यान दीजिए, उनके मन तो अब तक अंधे थे। मूसा ने जिस आवरण से अपना चेहरा ढका था, वह परमेश्वर की उस प्रजा के मन पर पड़ गया। वह पर्दा आज भी है, क्योंकि वे मसीह को धार्मिकता की व्यवस्था का अंत नहीं मानते। वे समझ नहीं पाते हैं कि मसीह व्यवस्था की पूर्ति है। उनका अंधापन अभी गया नहीं है। मित्रों, अगले अध्याय में हम देखेंगे कि इस संसार के ईश्वर ने अविश्वासियों के मन मस्तिष्क पर पर्दा डाल रखा है। हम देखेंगे कि यह सच है। हमने देखा है कि इसराइलियों के मन मस्तिष्क पर पर्दा पड़ा हुआ था, और पौलुस कहता है कि उनके मन पर आज भी पर्दा है, क्योंकि वे धार्मिकता के प्रयास में हैं। आगे हम पढ़ते हैं दूसरा कुरिन्थियों के पत्र 3 अध्याय के 15 पद में लिखा है, आज तक जब कभी मूसा की पुस्तक पढ़ी जाती है तो उनके हृदय पर पर्दा पड़ा रहता है। ध्यान दीजिए, वे व्यवस्था को पढ़कर सोचते थे कि वे उसे निभा सकते हैं, परंतु जब हम पुराना नियम पढ़ते हैं तो वह आत्मविश्वास वहां नहीं देख पाते जिसकी आशा परमेश्वर की प्रजा से आप रखे हैं कि उनके मन मस्तिष्क में हो। यहां तक कि दाऊद ने भी कुछ प्रश्न उठाए थे, अय्यूब भी विस्मय से भरा हुआ था, हिजकिया दीवार की ओर मुंह करके बहुत रोया था, क्योंकि उसे मृत्यु का समाचार मिल गया था। तथापि हमारे इस अनुग्रह के युग में मसीह में विश्वास करने वाला सबसे दुर्बल पवित्र जन को भी परमेश्वर द्वारा ग्रहण किए जाने का पूर्ण आश्वासन है। मित्रों, हम दूसरे कुरिन्थियों के पत्र 3 अध्याय के 16 पद में पढ़ते हैं, परंतु जब कभी उनका हृदय प्रभु की ओर फिरेगा तब वह पर्दा उठ जाएगा। ध्यान दीजिए, उनका हृदय, जब मन प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करता है या कर लेता है, तब पर्दा हट जाता है। वह जीवन के पाप के कारण अंधा हो जाता है। मित्रों, उसकी समस्या वास्तव में मन की समस्या है। जब वह अपने पापों से विमुख होकर प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करता है, तब वह पर्दा उठ जाएगा। दूसरा कुरिन्थियों 3 अध्याय के 17 पद में लिखा है, प्रभु तो आत्मा है, और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। ध्यान दीजिए, केवल परमेश्वर का आत्मा पर्दा उठा सकता है और मसीह को मुक्तिदाता ग्रहण करने में हमारी सहायता करता है। केवल वही है जो काम कर सकता है, एकमात्र वही। देखिए, पौलुस यहाँ वही बातों को कहता है जो शमौन पत्रस कहता है। प्रेरितों के काम 10 अध्याय उसके 43 पद में हम पढ़ते हैं, उसकी सब भविष्यद्वक्ता गवाही देते हैं कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा उसको उसके नाम के द्वारा पापों की क्षमा मिलेगी। मेरे मित्रों, यदि आप प्रभु यीशु मसीह को पुराने नियम में नहीं देख पाते तो पवित्र आत्मा मसीह की बातों को लेकर हम पर प्रकट करता। परमेश्वर का आत्मा आपको स्वतंत्रता में लाता है, वह आपको व्यवस्था के अधीन नहीं करता, वह आपको व्यवस्था से उबार कर यानी पार निकाल कर मसीह के पास ले आता है। और जब वह ऐसा करता है तब हम पढ़ते हैं 2 कुरिन्थियों 3:18 में लिखा है, परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। यह एक अति उत्तम धर्म शास्त्र है। पौलुस मन पर पर्दा पड़ने के बारे में चर्चा कर रहा है और वह कहता है कि मसीह को ग्रहण करने पर वह पर्दा हट जाता है। विश्वासी होने के कारण हम मसीह को निहारते हैं, परंतु हमारे जीवन में पाप के कारण हमारी आंखें पर्दे से ढकी रहती है। परंतु जब उस पाप का अंगीकार किया जाता है और हम मसीह की संगति में होते हैं, हम उसे निहारते हैं, तब हम उघाड़े चेहरे प्रभु की महिमा को देखते हैं जैसे दर्पण में। यहाँ विचार यह नहीं कि हम परिवर्तित हो जाते हैं, परंतु यह कि परिवर्तित होने तक निहारते रहें, इसके पश्चात हम उसका स्वरूप प्रकट कर सकते हैं। मेरे विचार में अधिक उचित अनुवाद होगा, प्रभु की महिमा को ऐसे देखते हैं जैसे दर्पण में हम उसी स्वरूप के या स्वरूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। यह प्रभु के द्वारा होता है जो आत्मा है। कभी कभी मेरा विवाद किसी ऐसे बुद्धिजीवी लोगों से हो जाता है, मैं उसके बाइबल अनुवाद पर प्रश्न करता हूँ और स्पष्ट कहता हूँ कि मैं उससे विवाद में हार जाता था, तथापि इस पद पर मैंने विवाद जीत लिया। मैं उसके अनुवाद से इस पद का उदाहरण देना चाहता हूँ और हम सब जो दर्पण में परमेश्वर के वचन में प्रभु की महिमा उघाड़े चेहरे देखते रहते हैं, उसके अपने स्वरूप में महिमा के एक अंश से दूसरे अंश लगातार बदलते जाते हैं, क्योंकि यह प्रभु की ओर से है जो आत्मा है। यह एक अति उत्तम अनुवाद है। जी हाँ, यह रूपांतरण नहीं है जैसा प्रभु यीशु मसीह के साथ हुआ था। मैंने आज तक किसी भी पवित्र जन का रूपांतरण नहीं देखा है। यह सच है कि परमेश्वर का वचन एक दर्पण है जिसमें हमें देखना है, वहां प्रभु यीशु दिखाई देता है। यही कारण है कि हमें परमेश्वर के वचन में बने रहना है और प्रभु यीशु को देखना है, और जब आप उसे लगातार देखते रहते हैं तब आप बदलते जाते हैं। दूसरे शब्दों में, परमेश्वर का वचन आपको नया जीवन प्रदान करने से अधिक कुछ करता है। हम परमेश्वर के आत्मा द्वारा वचन के पढ़ने से नया जन्म पाते हैं। पहला पत्रस की पत्री 1:23 में पत्रस लिखता है, क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। जी हाँ, परमेश्वर का वचन हमें बदलता भी है। ओह, यह कैसा महत्वपूर्ण बात है। काश मैंने दर्पण देखने में अधिक समय लगाया होता, उसे अधिकाधिक देखा होता। मेरे मित्रों, परमेश्वर के वचन में वह प्रकट है। वह तो महानुभाव नहीं है, वह एक सामान्य मनुष्य है। परमेश्वर के वचन में हम अनावृत मसीह को देखते हैं। वह कैसा महान है। जी हाँ, डॉक्टर HA आयरसाइड एक मनुष्य की कहानी सुनाते हैं। वह मरणासया पर था। डॉक्टर ने कह दिया था कि वह अधिक दिन नहीं जिएगा। उसका एक मित्र उससे भेंट करने के लिए आया। उसने कहा, मुझे बताया गया कि आप अब अधिक समय तक हमारे साथ नहीं रह पाएंगे। एक मरने वाले व्यक्ति से ऐसा कहना अच्छा है? उसने आगे कहा, मैं आशा करता हूँ कि इस अंधकार से भरी तराई में चलते चलते आप हमारे उद्धारकर्ता के हंसमुख चेहरे की झलक देख पाते हैं। उस रोगी मनुष्य ने साहस करके उसे देखा और कहा, झलक को तो छोड़ो, मैं तो 40 वर्षों से उसका चेहरा स्पष्ट देख रहा हूँ और मैं आपकी झलक के विचार से संतुष्ट नहीं हो पाऊंगा। आज उसे देखना कैसा महान है। शायद आपने यह कहानी सुनी होगी। किसी गांव में एक छोटा लड़का रहता था। वहां एक पथरीला पर्वत था जिस पर मनुष्य के चेहरे जैसी एक चट्टान थी। वे उसे महान पाषाण चेहरा कहते थे। उनका मानना था कि एक दिन उस गांव में उस चेहरे जैसा कोई आएगा और गांव के लिए बड़े बड़े काम करेगा और महान आशीष का कारण होगा। उनके इस पारंपरिक विचार से वह लड़का बहुत प्रभावित था। वह उस चट्टान को देखता रहता और उसके स्वरूप आने वाले की कल्पना करता था। समय निकलता गया और वह एक बूढ़ा हो गया। एक दिन वह सड़क पर जा रहा था कि किसी ने उसे देखकर पुकारा, वह आ गया, महान पाषाण चेहरा आ गया। वह मनुष्य बचपन से उस चट्टान को देखते देखते उसके स्वरूप में हो गया था। क्या आप मसीह के स्वरूप में होना चाहते हैं? यीशु को निहारते रहें। हम लोग बाइबल अध्ययन में एक अंग्रेजी का गीत गाते थे जिसकी पहली पंक्ति का अर्थ है, पवित्र होने का समय लो। परंतु हमारे प्राध्यापक हमें रोक कर कहते थे कि इसे बदल कर यह गाओ, उसे निहारने का समय लो। क्या आप पवित्र होना चाहते हैं? क्या आप उसे निहारते रहते हैं? मेरे मित्रों, यीशु पर आंखें गड़ाए रखें, उसका अद्भुत चेहरा पूरी तरह देखें, तब सांसारिकता मंद हो जाएगी उसकी महिमा और अनुग्रह में। जी हाँ, मुझे इसी की आवश्यकता है। मैं आशा करता हूँ कि आपको भी वचन के पृष्ठों में मसीह यीशु को निहारने की आवश्यकता होगी कि आप अधिकाधिक उसके स्वरूप में हो जाएं। मेरे मित्रों, यहाँ पर अध्याय 3 समाप्त होता है। अब हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे और अध्याय 4 से अपने अध्ययन को जारी रखेंगे। इसका विषय है मसीह के लिए कष्ट उठाने की सेवा में परमेश्वर की सांत्वना। मेरे प्रियो, यह परमेश्वर की सांत्वना का एक और पक्ष है। अध्याय 1 में हमने जीवन योजना के निमित्त परमेश्वर की सांत्वना की चर्चा की थी। इसके बाद अध्याय 2 में पाप में गिरे पवित्र जन के पुनरुद्वार में परमेश्वर की सांत्वना और अध्याय 3 में मसीह की महिमामय सेवा में परमेश्वर की सांत्वना की चर्चा की थी। अध्याय 3 क्या वास्तव में एक अद्भुत अध्याय नहीं था? अब हम पर्वत से नीचे नहीं उतरेंगे परंतु ऊपर ही रहेंगे और मसीह के लिए कष्ट उठाने की सेवा में परमेश्वर की सांत्वना की चर्चा करेंगे। अति संभव है कि हम कुछ अधिक ऊंचाई पर जाएं और मैं नहीं जानता कि क्या कहूं, परंतु हम ऐसी स्थिति में पहुंचेंगे जहां मुझे सांस लेने में कठिनाई होती है। पौलुस कहता है, ऊंचाई पर आ जाओ। हम यही करना चाहते हैं। मित्रों, आप मेरे साथ निकालिए दूसरे कुरिन्थियों की पत्री 4 अध्याय उसका 1 पद। लिखा हुआ है, इसलिए जब हम पर ऐसी दया हुई कि हमें यह सेवा मिली तो हम हियाब नहीं छोड़ते। ध्यान दें, यह एक महिमामय सेवा है। परमेश्वर ने हमें एक संदेश दिया है जो कोई भी मनुष्य सोचकर नहीं कर पाया था। सुसमाचार जो योजना प्रस्तुत करता है, उस योजना को तैयार करना मनुष्य के लिए असंभव है। यदि यह परमेश्वर की दया नहीं तो मैं नहीं समझ पाता कि परमेश्वर ने मुझे महिमामय सुसमाचार का सेवक होने के लिए क्यों बुलाया है। हम यह तो देख ही चुके हैं कि परमेश्वर दया का धनी है। जी हाँ, परमेश्वर ने मेरे पास आने से पूर्व अपनी दया को खाली नहीं कर दी थी कि उसने देखा, मुझे तो बहुत दया की आवश्यकता है। वह तो मुझे भी दया दिखाने में उदार था। अपनी दया के कारण ही उसने मुझे अनुमति दी कि बाइबल शिक्षा का रेडियो कार्यक्रम चलाऊं, आप तक इस सच्चे वचन को पहुंचाऊं। उसकी दया ही है कि हम थक नहीं जाते, हम उसके आनंद को मनाते हैं। इस सेवा में अद्भुत बात क्या है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि बाइबल अध्ययन में मैंने धर्मों के बारे में पढ़ा है और सच तो यह है कि मैं उस विषय से ऐसा आकर्षित हुआ कि मैंने लगभग निर्णय ही ले लिया था कि धर्मों का तुलनात्मक अध्ययन करूं। यद्यपि मैंने धर्मों का अध्ययन तो नहीं किया, मैं संसार के कुछ धर्मों का ज्ञान अवश्य ग्रहण कर पाया। विश्व के धर्मों को सारांश में कहा जा सकता है, करो करो करो, जबकि सुसमाचार कहता है हो गया। सुसमाचार कहता है कि परमेश्वर ने मेरे लिए कुछ किया है, मुझे विश्वास करना है, मुझे परमेश्वर पर भरोसा रखना है। उसके पास आने का एकमात्र मार्ग है विश्वास, यही मेरा मार्ग है। इब्रानियों के पत्र 11 अध्याय उसके 6 पद में लिखा है, विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना असंभव है। जी हाँ, इसके विपरीत विश्व के सब धर्म कहते हैं करो। यह बड़े आश्चर्य की बात है कि सब धर्मों में परमेश्वर के साथ संबंध बनाने के लिए कुछ न कुछ करने के लिए कहा गया है। एक धर्म कहता है 4 काम करो तो दूसरा धर्म कहता है 7 काम करो, तो किसी धर्म में 10 काम 10 आज्ञाएं जिन्हें करना है। मेरे मित्रों, कुछ धर्मों में विश्वास पर बल दिया गया है। यह विश्वास मसीह यीशु में विश्वास करना नहीं है, यह एक प्रकार का ऐतिहासिक तथ्य का स्वीकरण है कि यीशु कभी जीवित था और 2000 वर्ष पूर्व वह मर गया। क्या मैं यह कह सकता हूं कि यह मानना कि यीशु मर गया आपको उद्धार नहीं दिला सकता? मेरे मित्रों, मसीह यीशु हमारे पापों के लिए मर गया और धर्मशास्त्र के अनुसार फिर जी उठा, यही एक महत्वपूर्ण अंतर है। हमें उसके इस संपन्न कार्य पर विश्वास करना है, यह हो चुका है अर्थात पूरा हो गया है। पौलुस भी कभी व्यवस्था के अधीन था, वह जानता था कि कर्म कांड क्या है। फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय उसके 5 और 6 पद में वह कहता है, इब्रानियों का इब्रानी हूँ, व्यवस्था के विषय में यदि कहो तो मैं फरीसी हूँ, व्यवस्था की धार्मिकता के विषय में यदि कहो तो निर्दोष था। वह व्यवस्था के अधीन था और आशा रखता था कि वह अपने उद्धार को प्राप्त करेगा। एक दिन दमिश्क जाते समय मार्ग में उसकी भेंट मसीह यीशु से हुई। उससे अपना प्रभु एवं उद्धारकर्ता ग्रहण करने के बाद उसने लिखा फिलिपियों के पत्र 3 अध्याय उसके 8 और 9 पद में, मैं मसीह को प्राप्त करूं और उसमें पाया जाऊं, न कि अपनी उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है। देखिए, प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में आ जाने पर पौलुस ने देखा कि वह अपने प्रयासों द्वारा सफल नहीं होगा। व्यवस्था के आधार पर अर्जित धार्मिकता पर्याप्त नहीं थी, उसे मसीह की धार्मिकता की आवश्यकता थी। पौलुस कहता है कि वह दिन उसके लिए एक नया दिन था। इस सत्य को अंतर्ग्रहण करने पर हमारे लिए भी वह दिन एक नया दिन होता है। आज हमें दया की आवश्यकता है, परमेश्वर दयावंत है, दयावान है, परमेश्वर ने हमसे प्रेम रखा है, परमेश्वर ने अपनी दया में हमारे लिए एक उद्धारकर्ता भेजा है, अब वह हमें अपने अनुग्रह द्वारा उद्धार दिलाता है। अब हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि उसने सारे कार्य को पूरा कर दिया है। जी हाँ, वह कैसा महान व्यक्ति है। क्या आप चाहते हैं कि आप उद्धार को प्राप्त करें, अपने पापों से छुटकारा प्राप्त करें? तो आप इस बात को जान लें कि आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, किसी भी चीज को लाने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर चाहता है कि आप अपने आप को लाएं, अपने पापों को उसके सामने में स्वीकार कर लें और इस बात को मान लें कि आप पापी हैं, आपने उसके विरोध में पाप किया है। और निश्चय जाने कि जब आप अपने पापों को मान लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं, सच्चा पश्चाताप करते हैं, उससे क्षमा मांगते हैं, तो वह आपके पापों को अपने उस पवित्र लहू के द्वारा जिसे उसने कलवरी क्रूस पर आपके पाप के निमित्त बहा दिया है, उससे धोकर आपको शुद्ध करता है, आपके जीवन में शांति और आनंद देता है। क्या आप उस पर विश्वास करने के लिए तैयार हैं? जी हाँ, वचन में हमें साफ साफ बताया गया है कि यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने में और हमें शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। आज वह आपका इंतजार कर रहा है, वह चाहता है कि आप कोई भी क्यों ना हो उस पर विश्वास करें, क्योंकि उसने अपने आप को सारे मानव जाति के लिए बलिदान किया। मेरे मित्रों, वह आज आपसे प्रेम करता है, आपके जीवन की हर एक समस्याओं को समझता और जानता है। वह चाहता है कि आप इससे बाहर निकले। यह सब तब होगा जब आप उसके पास आएंगे। क्या आप आना चाहते हैं? यदि हाँ, तो आज इस समय प्रभु यीशु को अपने जीवन में आमंत्रित कीजिए और वह आपके जीवन में शांति और आनंद को प्रदान करेंगे। मेरे प्रियो, यहाँ पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है। मैं विश्वास करता हूँ कि आज के इस वचन के प्रकाशन में आप अवश्य ही अपने जीवन को देखेंगे, विचार करेंगे और उस पर विश्वास करेंगे, ताकि आप उस महान उद्धार के कार्य को अपने जीवन में देख सकें। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष दे एवं आप सबकी सहायता करे।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। इन्हें प्राप्त करने के लिए आप हमें इस पते पर लिख सकते हैं। कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए। कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। और हमारा दूसरा नंबर है 09651433397। याद रहे 09651433397। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार। Oh, man.